एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम इतिहास के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सुना है पर शायद समझा कम है।
हाँ बिल्कुल।
धर्मयुद्ध यानी क्रूसेड्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में वो तलवारें, घोड़े और एक खास तरह की इमेज बनती है ना?
बिल्कुल, और वो इमेज अक्सर मतलब या तो अधूरी होती है या फिर थोड़ी गलत।
इसीलिए आज हम क्रिस्टोफर टायरमैन की किताब द क्रूसेड्स को आधार बनाकर इस काफी उलझे हुए इतिहास को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
और ये जरूरी भी है क्योंकि क्रूसेड शब्द आज भी आप देखिए कितनी आसानी से मॉडर्न बहसों में इस्तेमाल हो जाता है।
हाँ, बिना सोचे समझे कई बार।
बिल्कुल, बिना ऐतिहासिक संदर्भ के। टायरमैन की किताब इसी चीज में मदद करती है। वो बताती है कि ये सिर्फ धर्म बनाम धर्म की सीधी लड़ाई नहीं थी।
सही कहा। ये किताब दिखाती है कि कहानी कहीं ज्यादा पेचीदा है। इसमें उस वक्त का समाज, सियासत, पैसा, मतलब सब कुछ गुंथा हुआ था। तो तैयार हैं सफर के लिए?
हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लेखक की बात कर लें, क्रिस्टोफर टायरमैन।
हाँ बताइए।
ये कोई ऐसे वैसे इतिहासकार नहीं है, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और क्रूसेड्स के इतिहास पर दुनिया के मतलब टॉप एक्सपर्ट्स में से एक माने जाते हैं।
अच्छा, और उनकी खास बात, मतलब क्या अलग है उनके अप्रोच में?
उनकी खास बात ये है कि वो सिर्फ राजाओं और पोप की कहानियों या सिर्फ लड़ाइयों पर फोकस नहीं करते, वो सबूतों पर चलते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर अक्सर लोग शायद ध्यान नहीं देते।
जैसे कि?
जैसे कि सामाजिक माहौल कैसा था, आर्थिक पहलू क्या थे, और सबसे दिलचस्प जो आपने कहा, लॉजिस्टिक्स।
हाँ, लॉजिस्टिक्स, मतलब ये हजारों की फौजें चलती कैसे थी?
बिल्कुल, पैसा कहाँ से आया, खाना पीना, हथियार, जहाज, ये सब सवाल वो उठाते हैं।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल सवाल है।
हाँ, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। उनकी किताबें जैसे गॉड्स वॉर इस सोच को चुनौती देती हैं कि क्रूसेड्स बस धार्मिक जोश का नतीजा थे। टायरमैन जमीनी हकीकत दिखाते हैं।
वो पूछते हैं, भाई लड़ने तो जा रहे हो पर इंतजाम क्या?
एग्जैक्टली, वो हमें बड़े बड़े सिद्धांतों से हटाकर उन लोगों के नजरिए से सोचने पर मजबूर करते हैं जिन्होंने असल में ये सब झेला था।
तो ये किताब द क्रूसेड्स ये असल में करती क्या है, इसका दायरा क्या है?
ये किताब क्रूसेड्स आंदोलन का एक पूरा, आप कह सकते हैं, व्यापक और थोड़ा संशोधनवादी इतिहास पेश करती है।
संशोधनवादी मतलब?
मतलब जो पुरानी सरल धारणाएं हैं उनको चुनौती देती है। ये 11वीं सदी में इसकी सोच कैसे बनी, वहां से लेकर इसके खत्म होने और फिर एक शक्तिशाली ऐतिहासिक याद बनने तक का पूरा सफर दिखाती है।
और इसका मुख्य मकसद क्या है?
सबसे बड़ा मकसद है हमें उस सीधी सादी कहानी से बाहर निकालना कि ये सभ्यताओं का टकराव था, ईसाई बनाम मुसलमान।
हाँ, जो अक्सर पॉपुलर कल्चर में दिखाया जाता है।
बिल्कुल, टायरमैन कहते हैं कि ये इतना सिंपल नहीं था। उनके हिसाब से क्रूसेड्स उस जमाने की यूरोप की ही एक तार्किक पैदाइश थे। हिंसक थे, जटिल थे, लेकिन उसी समाज का हिस्सा थे, कोई अजीब बाहरी चीज नहीं।
तो ये किताब हमें पहले उस माहौल में ले जाती है 11वीं सदी की यूरोप में?
हाँ, पहले वो समझाते हैं कि माहौल कैसा था। यूरोप में अंदरूनी हिंसा बहुत थी, शूरवीर आपस में लड़ते रहते थे, चर्च की ताकत बढ़ रही थी और वो इस हिंसा को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था।
वो पीस एंड ट्रूथ ऑफ गॉड जैसे आंदोलन?
हाँ बिल्कुल, और साथ ही लोगों में पापों से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ यात्रा का चलन बहुत था।
अच्छा,
और यहीं पर पोप अर्बन द्वितीय आते हैं 1095 में क्लेरेमोंट की काउंसिल में। उन्होंने बड़ी चालाकी से इन सब चीजों को मिला दिया।
कैसे?
उन्होंने कहा, जाओ पवित्र भूमि को आजाद कराओ, ये भी एक तरह की तीर्थ यात्रा है, एक सशस्त्र तीर्थ यात्रा, और इससे तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे।
वाह, मतलब लड़ाई भी और मोक्ष भी, खासकर उन योद्धाओं के लिए जिनका काम ही लड़ना था।
एग्जैक्टली, उनके लिए तो ये एकदम सही ऑफर था। और बिजेंटिन सम्राट ने जो मदद मांगी थी वो तो बस एक कह लीजिए तात्कालिक कारण बन गया।
दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, टायरमैन ये भी बताते हैं कि ये क्रूसेड का आइडिया सिर्फ पवित्र भूमि तक सीमित नहीं रहा।
नहीं बिल्कुल नहीं, इसे स्पेन में इस्तेमाल किया गया, जिसे रिकॉन्क्वेस्टा कहते हैं, मुसलमानों से इलाके वापस लेने के लिए।
अच्छा,
बाल्टिक इलाके में जो लोग ईसाई नहीं थे उनके खिलाफ ट्यूटोनिक नाइट्स ने क्रूर क्रूसेड किए। और हद तो ये है कि यूरोप के अंदर ही जो ईसाई समूह चर्च की मुख्य धारा से अलग थे, जैसे फ्रांस में एल्बिजेंसियन।
हाँ, उनके खिलाफ भी?
उनके खिलाफ भी क्रूसेड हुआ, और यहाँ तक के पोप के राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ भी इसे इस्तेमाल किया गया। मतलब ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, एक लचीला टूल बन गया था।
तो ये क्रूसेड का लेबल कहीं भी लगाया जा सकता था जहाँ चर्च को जरूरत महसूस हुई।
बिल्कुल। चलिए अब जरा कुछ खास क्रूसेड्स और घटनाओं पर आते हैं टायरमैन के नजरिए से। पहला क्रूसेड 1095 से 1099।
हाँ, ये सबसे मशहूर है शायद। पोप के भाषण ने आग लगा दी, पर लोग क्यों गए? क्या सिर्फ धर्म के लिए?
टायरमैन यही कहते हैं कि वजह मिलीजुली थी। हाँ, सच्ची धार्मिक भावना थी, पापों से छुटकारे की इच्छा थी, लेकिन साथ में सामंती दबाव भी था। मतलब अपने लॉर्ड का हुक्म मानना, समाज का प्रेशर था, इज्जत कमाने की चाह थी, और हाँ, जमीन और लूटपाट का लालच भी था।
तो मोटिवेशन मिक्स था।
बिल्कुल। पहले तो आम लोगों की एक अनियंत्रित भीड़ चल पड़ी जिसे पीपल्स क्रूसेड कहते हैं।
हाँ, वो तो असफल रहा ना।
बुरी तरह। वो रास्ते में ही मतलब या तो मारे गए या बिखर गए। फिर असली प्रोफेशनल योद्धाओं की सेना गई। लेकिन सोचिए जरा, हजारों लोग, घोड़े, साजो सामान, यूरोप से मध्य पूर्व तक पैदल और समुद्री रास्ते से।
यही पर लॉजिस्टिक्स का मुद्दा आता है।
हाँ, और टायरमैन इसी पर बहुत जोर देते हैं। खाना कहाँ से आएगा, पानी, बीमारियां फैल रही हैं, दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, और नेताओं में आपस में नहीं बन रही।
कौन थे मुख्य नेता?
कई थे। गॉडफ्रे ऑफ बुयन, बोहेमोंड ऑफ टोरंटो, रेमंड ऑफ टुलूज, सब बड़े योद्धा थे, लेकिन सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं।
तो ये कोई आसान सफर नहीं था।
बिल्कुल नहीं। ये भयानक मुश्किलों और क्रूर लड़ाइयों से भरा था। नाइसिया की घेराबंदी, एंटियोक की घेराबंदी, जहां बहुत खून बहा, और आखिरकार 1099 में यरूशलम पर कब्जा।
और वहां कब्जे के बाद?
हाँ, टायरमैन वहां हुए भयानक नरसंहार का भी जिक्र करते हैं। ये एक क्रूर सच्चाई है।
इसके बाद फिर वहां क्रूसेडर राजे बने,
एंटियोक और एडेसा। और ये सिर्फ फौजी अड्डे नहीं थे जैसा लोग सोचते हैं। वहां एक जटिल मिलाजुला समाज विकसित हुआ
जहां अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग साथ रहते थे।
हाँ, ईसाई, अलग अलग तरह के, मुसलमान, यहूदी, व्यापार होता था, खेती होती थी, एक तरह का मल्टीकल्चरल समाज था। हालांकि तनाव हमेशा बना रहता था।
लेकिन ये स्थिति बदली फिर?
हाँ, 12वीं सदी में चीजें बदलने लगीं। पहले तो क्रूसेडर राज्यों ने अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। इसमें नाइट्स टेम्पलर और नाइट्स हॉस्पिटैलिटर जैसे सैन्य धार्मिक संगठनों का बड़ा रोल था।
हाँ, इनके बारे में सुना है।
लेकिन फिर 1144 में एक बड़ा झटका लगा। एडेसा का राज्य मुसलमानों ने वापस जीत लिया।
अच्छा, तो इसके जवाब में दूसरा क्रूसेड हुआ?
हाँ, दूसरा क्रूसेड 1147-1149। यूरोप में बड़ा जोश था, लेकिन ये बुरी तरह फेल हुआ।
क्यों?
वाली दिक्कतें, खराब प्लानिंग, नेताओं में आपसी जलन और लॉजिस्टिक्स की भारी समस्याएं। ये यूरोप के लिए एक बड़ा सदमा था।
और इसके बाद सलादीन का उदय हुआ।
बिल्कुल। सलादीन एक बहुत काबिल नेता थे। उन्होंने मिस्र और सीरिया को एकजुट किया और जिहाद की विचारधारा का बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया।
उन्होंने क्रूसेडरों को हराया?
हाँ, 1187 में हत्तिन की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ था। सलादीन ने क्रूसेडर सेना को लगभग खत्म कर दिया और फिर यरूशलम पर दोबारा कब्जा कर लिया।
ओहो, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा ईसाइयों के लिए।
बहुत बड़ा। और इसी के जवाब में शुरू हुआ तीसरा क्रूसेड 1189-1192।
ये वही जिसमें इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायनहार्ट थे?
हाँ, रिचर्ड शेरदिल। ये क्रूसेड कहानियों और फिल्मों में बहुत मशहूर है, रिचर्ड और सलादीन की टक्कर। रिचर्ड ने वाकई बहादुरी दिखाई, एकर जैसा शहर वापस जीता भी।
लेकिन यरूशलम?
नहीं, यरूशलम वापस नहीं ले पाए। टायरमैन दिखाते हैं कि ये किस्से कहानियों से ज्यादा एक थका देने वाली, मुश्किल और आखिर में बेनतीजा लड़ाई थी।
तो नतीजा क्या निकला?
आखिर में रिचर्ड और सलादीन के बीच एक समझौता हुआ। ईसाई तीर्थयात्री यरूशलम जा सकते थे, लेकिन शहर पर कंट्रोल सलादीन का ही रहा। तो देखा जाए तो तीसरा क्रूसेड भी अपना मुख्य मकसद पूरा नहीं कर पाया।
इसके बाद आता है चौथा क्रूसेड, जिसके बारे में आपने कहा था कि वो बड़ा अजीब था।
हाँ, चौथा क्रूसेड 1202-1204 सच में बहुत अजीब है, और ये टायरमैन के तर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आदर्शों पर जमीनी हकीकत हावी हो सकती है।
क्या हुआ था इसमें? ये कहाँ के लिए निकला था?
निकला तो था मिस्र पे हमला करने के लिए, जो उस वक्त सलादीन के वंशजों का गढ़ था। लेकिन क्रूसेडरों के पास वेनिस के जहाजों का किराया चुकाने के लिए पूरे पैसे नहीं थे।
अच्छा, पैसे कम पड़ गए।
हाँ, तो वेनिस के लोगों ने, जो बहुत चालाक व्यापारी थे, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप पहले हमारा एक काम कर दीजिए, ज़ारा नाम के शहर पर कब्जा करने में हमारी मदद कीजिए, फिर हम आपको ले चलेंगे।
ज़ारा, ये कहाँ था?
ये हंगरी के राजा के अधीन एक ईसाई शहर था और वेनिस का प्रतिद्वंदी था।
क्या मतलब, क्रूसेडर निकले थे मुसलमानों से लड़ने और हमला कर दिया एक ईसाई शहर पर सिर्फ पैसों के लिए?
बिल्कुल, पोप इससे बहुत नाराज हुए, उन्होंने क्रूसेडरों को चर्च से निकाल भी दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी।
और क्या हुआ?
फिर एक बिजेंटिन राजकुमार, जो अपनी गद्दी वापस चाहता था, वो इनके पास आया। उसने वादा किया कि अगर क्रूसेडर्स उसे कॉन्स्टेंटिनोपल, जो उस वक्त पूर्वी ईसाई धर्म का सबसे बड़ा और अमीर शहर था, की गद्दी दिलाने में मदद करे, तो वो उनका सारा कर्जा चुका देगा और उन्हें मिस्र जाने में भी मदद करेगा।
और क्रूसेडरों ने मान लिया?
हाँ, लालच में आ गए। वो कॉन्स्टेंटिनोपल गए, राजकुमार को गद्दी पर बैठाया, लेकिन वो वादे के मुताबिक पैसा नहीं दे पाया। तो 1204 में क्रूसेडरों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से लूटा।
मर गया।
3 दिन तक लूटपाट चलती रही। ये ईसाई इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है।
हे भगवान, ये तो मतलब पूरी तरह से रास्ते से भटक गए।
बिल्कुल, टायरमैन यही दिखाते हैं कि कैसे पैसों की जरूरत, राजनैतिक चालें और लॉजिस्टिक्स की मजबूरियां धार्मिक आदर्शों पर पूरी तरह हावी हो गई। ये घटना क्रूसेडिंग मूवमेंट के नैतिक पतन का प्रतीक बन गई।
इसके बाद भी क्रूसेड हुए?
1721 मिस्र पर केंद्रित था, पर वो भी लॉजिस्टिक्स और खराब नेतृत्व के कारण फेल हो गया।
और छठा, आपने कहा था वो मजेदार था।
हाँ, छठा क्रूसेड 1228-1229 अनोखा था। इसका नेता था पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय। पोप ने उसे चर्च से निकाल रखा था।
अच्छा, फिर उसने क्या किया?
उसने लड़ाई नहीं की। वो अरबी जानता था, मुस्लिम शासकों से उसकी अच्छी बनती थी। उसने बातचीत करके एक संधि के जरिए यरूशलम या कुछ शर्तों के साथ हासिल कर लिया,
बिना लड़े।
हाँ, लेकिन पोप इससे खुश नहीं हुए। उन्हें लगा ये तरीका सही नहीं है, इसमें धार्मिक जोश कहाँ है। ये दिखाता है कि क्रूसेड कितने ज्यादा राजनीतिक हो चुके थे।
और फिर फ्रांस के राजा सेंट लुई के क्रूसेड।
हाँ, लुई नवम, वो बहुत धर्मपरायण राजा माने जाते हैं। उन्होंने 2 बड़े क्रूसेड किए, 7वां मिस्र में 1248-1254 और 8वां ट्यूनिस में 1270।
उनका क्या हुआ?
दोनों बुरी तरह असफल रहे। 7वें में वो खुद बंदी बना लिए गए। 8वें क्रूसेड के दौरान ट्यूनिस में बीमारी से उनकी मौत हो गई।
तो धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो गया।
हाँ, 13वीं सदी के अंत तक आते आते बड़े पैमाने पर क्रूसेड करने के लिए ना तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बची थी, ना ही वैसा लोकप्रिय उत्साह। बहुत महंगा सौदा था और नतीजे मिल नहीं रहे थे।
और फिर 1291 में एकर का पतन हुआ।
हाँ, एकर आखिरी बड़ा क्रूसेडर गढ़ था। 1291 में मिस्र के मामलुक सुल्तानों ने उस पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही पवित्र भूमि में यूरोपीय शासकों का दौर प्रभावी रूप से खत्म हो गया।
लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, जैसा आपने कहा, इसका असर लंबा रहा।
बिल्कुल, टायरमैन इसके दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण करते हैं। पवित्र भूमि भले ही हाथ से निकल गई, लेकिन यूरोप पर इसका गहरा असर पड़ा।
क्या असर? पॉजिटिव, नेगेटिव?
दोनों तरह के। एक तरफ व्यापार बढ़ा, खासकर इटली के शहरों जैसे वेनिस और जिनोवा ने खूब कमाया। पूरब से नई विचार, नई तकनीकें यूरोप पहुंची।
और सरकारों पर?
सरकारों ने टैक्स वसूलने के नए तरीके सीखे। नौकरशाही थोड़ी बेहतर हुई, क्योंकि इतने बड़े अभियान चलाने के लिए बेहतर संगठन की जरूरत थी। और हाँ, शुरू में पोप का अधिकार और प्रभाव काफी बड़ा।
लेकिन नेगेटिव असर भी थे।
बहुत थे। सबसे बड़ा तो धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा की विरासत। मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी। यूरोप के अंदर यहूदियों पर हमले हुए, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। और जैसा हमने पहले कहा, क्रूसेड का आइडिया दूसरे दुश्मनों के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ, जिससे यूरोप के अंदर भी हिंसा फैली। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो टायरमैन कहते हैं, वो ये कि क्रूसेड की याद को बाद की सदियों में कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे तोड़ा मरोड़ा गया।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो अगर हम टायरमैन की किताब के जो मुख्य संदेश हैं, उनको समेटना चाहें तो क्या होंगे?
सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश तो यही है, क्रूसेड्स को सिर्फ धर्म युद्ध समझना बंद करें।
हाँ, ये बार बार आ रहा है।
धर्म, मोक्ष, सामंती, वफादारी, सामाजिक दबाव, इज्जत, जमीन, पैसा, सब कुछ था। इसे सभ्यताओं का टकराव कहना इतिहास को बहुत ज्यादा सरल बनाना है।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, पोप के पद और उसकी वैचारिक भूमिका। क्रूसेड का आइडिया, ये सशस्त्र तीर्थ यात्रा का कॉन्सेप्ट, ये पोप का ही एक तरह का आविष्कार था,
जिसने तीर्थ यात्रा, पाप मुक्ति और युद्ध को मिला दिया।
हाँ, और इसे उन्होंने अपने अधिकार को मजबूत करने और यूरोप पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़ी कुशलता से इस्तेमाल किया।
तीसरा पॉइंट क्या होगा?
तीसरा, और ये टायरमैन का एक सिग्नेचर पॉइंट है, लॉजिस्टिक्स, वित्त और प्रचार का जबरदस्त महत्व,
पैसे और इंतजाम की बात।
हाँ, वो बार बार जोर देते हैं कि इन अभियानों की सफलता या विफलता अक्सर युद्ध के मैदान से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती थी कि पैसा कैसे जुटाया गया, जहाज कैसे मिले, रसद कैसे पहुंची। चौथा क्रूसेड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
और प्रचार?
हाँ, धर्मोपदेश, गीत, कहानियां, ये सब लोगों को भर्ती करने और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थे।
चौथा मुख्य संदेश?
चौथा, क्रूसेड की अवधारणा का लचीलापन। ये सिर्फ पवित्र भूमि के लिए नहीं था, इसे स्पेन में रिकॉन्क्विस्टा के लिए, बाल्टिक में गैर ईसाइयों के खिलाफ, फ्रांस में अल्बिजिनसियन जैसे विधर्मियों के खिलाफ और पोप के राजनैतिक दुश्मनों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया। ये ईसाई विस्तार और आंतरिक नियंत्रण का एक बहुत ही एडेप्टेबल, मतलब अनुकूलनीय तंत्र था।
और पांचवा?
पांचवा ये कि लगातार संघर्ष के मिथक को चुनौती देना। हाँ, क्रूरता बहुत थी, लेकिन टायरमैन क्रूसेडर राज्यों में सह अस्तित्व, व्यापार और यहाँ तक कि ईसाई और मुस्लिम शासकों के बीच गठबंधन के दौरों का भी जिक्र करते हैं।
मतलब हमेशा लड़ाई ही नहीं थी?
नहीं, हमेशा नहीं। और सबसे जरूरी, वो आधुनिक समय में क्रूसेड की स्मृति के दुरुपयोग के प्रति आगाह करते हैं। इतिहास की जटिलता को समझना जरूरी है, उसे आज के एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है।
किताब में कुछ बहुत सोचने लायक बातें हैं, जैसे एक विचार ये है, मैं ऐसे अपने शब्दों में कह रहा हूँ, क्रूसेड्स किसी एक ईसाई जगत की सोची समझी विदेश नीति नहीं थे, बल्कि वो उस हिंसक, पापों से डरे हुए और लालची समाज का एक तरह का बहाव थे, जिसे पोप ने दिशा दी पर पूरी तरह कंट्रोल कभी नहीं कर पाए।
हाँ, ये बहुत अच्छा सारांश है। ये उस मिथक को तोड़ता है कि ये सब कुछ बहुत प्लान्ड था। ये मध्ययुगीन यूरोप की अंदरूनी डायनामिक्स की तरफ इशारा करता है। योद्धा वर्ग की हिंसा की आदत, पाप का डर, जमीन की भूख, पोप ने बस उसे चैनलाइज किया।
एक और दमदार विचार, किसी क्रूसेड की सफलता या विफलता अक्सर लड़ाई में दिखाए गए जोश या सेनापति की काबिलियत से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती थी कि पैसा जुटाने, जहाज हासिल करने और फौज के लिए खाने पीने का इंतजाम करने जैसी नीरस लगने वाली चीजें कितनी अच्छी तरह से की गई।
बिल्कुल, ये फिर वही लॉजिस्टिक्स वाली बात, ऊंचे आदर्श अपनी जगह पर जमीनी हकीकत,
जमीनी हकीकत पैसा और पेट है।
हाँ, चौथा क्रूसेड इसका क्लासिक केस है, पैसे की कमी ने पूरा मिशन ही बदल दिया। ये आज भी कितना सच है ना, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई आंदोलन हो, अगर प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक नहीं तो
मुश्किल है।
जैसे हमारे यहाँ भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है।
बिल्कुल।
और एक तीसरा विचार, क्रूसेड का आइडिया एक कमाल का लचीला और टिकाऊ हथियार साबित हुआ। इसे यरूशलेम में मुसलमानों पर, प्रुशिया में बुतपरस्तों पर, फ्रांस में विधर्मियों पर या इटली में पोप के राजनीतिक दुश्मनों पर किसी पर भी निशाना साधा जा सकता था।
ये दिखाता है कि क्रूसेडिंग सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संस्था, एक सिस्टम बन गया था।
युद्ध की एक कानूनी और आध्यात्मिक कैटेगरी जिसे चर्च अपने किसी भी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ये सिर्फ पवित्र भूमि के बारे में नहीं था।
तो इस सारे विश्लेषण से, इस इतिहास से आज के लिए क्या सबक मिलते हैं, क्या प्रासंगिकता है इसकी?
देखिए, पहला सबक तो है आसान जवाबों और सीधी कहानियों से सावधान रहना। टाइमन दिखाते हैं कि इतिहास कितना जटिल है, कितने शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। ये हमें आज के संघर्षों को, सामाजिक आंदोलनों को ज्यादा बारीकी से देखने की समझ देता है।
हम बनाम वो से आगे सोचने की।
बिल्कुल, सभ्यताओं का टकराव जैसे सरलीकरणों से परे जाने की। दूसरा, विचारधारा और प्रचार की ताकत को समझना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
कैसे धार्मिक या किसी और तरह की विचारधारा का इस्तेमाल करके हजारों लोगों को बड़े से बड़े जोखिम उठाने और यहाँ तक कि हिंसा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये हमें आज की राजनीतिक बयानबाजी, राष्ट्रवाद, धर्म के नाम पर होने वाली लामबंदी को समझने का एक ऐतिहासिक नजरिया देता है।
कैसे भावनाओं को इस्तेमाल किया जाता है।
हाँ, तीसरा, आदर्शों और स्वार्थ के बीच का जो रिश्ता है उसे पहचानना। क्रूसेड्स दिखाते हैं कि कितने भी ऊंचे आदर्शों वाले आंदोलन क्यों न हो, उनमें व्यावहारिक स्वार्थ, पैसा, जमीन, ताकत लगभग हमेशा एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है।
मतलब सिर्फ नारों पर ना जाए।
बिल्कुल, ये किसी भी बड़े मानवीय प्रयास का विश्लेषण करने के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई चैरिटी हो, कोई राजनीतिक आंदोलन हो या कोई कॉर्पोरेट मिशन।
और चौथा,
ऐतिहासिक स्मृति के परिणाम। कैसे किसी घटना की याद खुद उस घटना से ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। क्रूसेड की स्मृति को सदियों से अलग अलग समूहों ने अपने अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल किया है।
ये बात बहुत गहरी है।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि अतीत में क्या हुआ था, ये समझना भी जरूरी है कि उसे कैसे याद किया गया, कैसे इंटरप्रेट किया गया और आज उसका क्या मतलब निकाला जा रहा है। वर्तमान को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है।
तो अंत में अगर हम अपने टेक अवेज की बात करें, मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात शायद यही थी कि ये बड़े बड़े धर्मयुद्ध असल में लॉजिस्टिक्स मतलब पैसे और मैनेजमेंट पर कितने ज्यादा टिके हुए थे। ये युद्ध की जो रोमांटिक छवियां हैं उनसे बहुत अलग है। और हाँ, ये भी कि क्रूसेड शब्द कितना फ्लेक्सिबल था।
मेरे लिए सबसे मूल्यवान सबक है इतिहास की जटिलता और उसके मानवीय पहलू को समझना। टाइलमैन हमें दिखाते हैं कि क्रूसेड्स कोई अजीब कट्टरपंथी घटना नहीं थी, बल्कि वो मध्ययुगीन दुनिया की गहरी चिंताओं, महत्वाकांक्षाओं और विश्वासों की एक भले ही क्रूर लेकिन तार्किक अभिव्यक्ति थी। वो हमें इतिहास का आज के लिए दुरुपयोग करने के खतरों से आगाह करते हैं और उसे उसके अपने संदर्भ में समझने पर जोर देते हैं, और यही शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्त्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।